Is it true?
Is it true?
Is it true?
Is it true?
Yes, it's true.
Yes,
it's true.
Yes,
it's
true.
Yes, it's true.
Yes, it's true.
Yes, it's true.
Yes, it's true, man.
Yes, it's true.
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 خداوند یسوع مسیح کے نام میں میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں اور خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج شام آپ کی خدمت میں خدا کا کلام لے کر پھر سے آ سکا. آج کا کیونکہ مہینے کا یہ ایسا دن ہے جس میں موسم اتنا ٹھنڈا نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور سارا جلال ہم خدا یسوع مسیح کو دیتے ہیں. میں مجھے پچھلے ہفتے بھائی سیمول صاحب نے کہا تھا, سیمول حق صاحب نے, کہ میں محبت کے بارے میں خدا کے کلام میں سے تعلیم دوں, تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. لیکن میں بھائی سیمول حق سے اور باقی لوگوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے جیسا پرومس کیا تھا ویسا نہیں کر سکا, کیونکہ وہ پیغام جو میں اگلی دفعہ ڈیفینیٹلی سناؤں گا محبت کے بارے میں. صرف ایک بات کہوں گا, کلام میں لکھا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے اور سب باتوں کو برداشت کرتی ہے, جس کا یہ مطلب ہے. تو پہلا گرنتھیوں اس کا 13 باب, تو اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا کے لوگوں سے, تو پھر ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں, ہم سہ لیتے ہیں اور پھر بھی ہم خدا کی محبت میں اور آپسی محبت میں ہم مسیح یسوع میں قائم رہتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا عجیب ہے, کیونکہ رات کو میری بات ہوئی تھی ہمارے ایک دوست ہیں بشپ صاحب, تو ان کے ساتھ وہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور مجھے کسی اور نے بھی پہلے اس سے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, تو میرا خیال تھا کہ میں اس ٹاپک کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اصل میں کچھ لوگوں کا خیال ایسا ہے, ان کا ماننا ایسا ہے کہ پاک روح کے بغیر, روح القدس کے بغیر خداوند یسوع مسیح کچھ نہیں کر سکتے تھے. اور یہ بائبل کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. ہم ایسا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا دریائے یردن کے کنارے, جب یوحنا بپتسمہ دینے والے بپتسمہ دے رہے تھے, تو خداوند یسوع مسیح بھی وہاں پر گئے اور بے شک ان میں جو بات چیت ہوئی اس کو بھی میں بیان کروں گا. اور جو کچھ یوحنا نے, یوحنا بپتسمہ دینے والے جان دا بیپٹسٹ جو ہیں, جو کچھ انہوں نے کہا خدا یسوع مسیح کے بارے میں, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور کیا واقعی خداوند یسوع مسیح کو کچھ بھی کرنے کے لیے پاک روح کی ضرورت تھی, یا خداوند یسوع مسیح ویسے ہی سب کچھ کر سکتے تھے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور شاید آپ نے کبھی اس کے بارے میں تعلیم پائی ہو, یا آپ کو تانو سکھیا اس بارے دیتی گئی ہے یا نہیں دیتی گئی, یا جے کوئی سکھیا دیتی بھی کسی نے تو ہو سکتا ہے بھی وہ ٹھیک نہ ہوئے. اس لیے میں اس تعلیم نو, اس سکھیا نو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ, خدا کے کلام کے مطابق. اب سب سے پہلی بات तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो बपतिस्मा यूहन्ना नबी दे रहे थे वो दरअसल जो इसराइली लोग थे उन यहूदियों को जब वो कलाम सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मुनादी कर रहे थे, और लिखा है कि बहुत से लोग जो थे वो अपने गुनाहों से तौबा करके यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे। खुदा यीशु मसीह भी वहां पर आ गए। मत्ती की इंजील और उसका तीसरा बाब और उसकी पहली जब 18-19 आयात जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये जिक्र आप देख सकते हैं, और लुका की इंजील और उसके तीसरे बाब में भी आप इसका जिक्र देख सकते हैं। तो यूहन्ना जब मुनादी कर रहे थे, जब लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, तो वो उसके साथ साथ लोगों को बेशक वो गुनाहों की माफी का बपतिस्मा दे रहे थे, और उसके साथ वो मसीह के बारे में प्रचार कर रहे थे। खुदा यीशु मसीह के यानी मसीह के आने के बारे में लोगों को बयान कर रहे थे, बता रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आता है, मेरे बाद आने वाला है, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। और ये यूहन्ना दरअसल वो शख्स है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जितने भी औरतों में से पैदा हुए हैं उन सब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। अब खुदा यीशु मसीह इसके हक में यह फरमा रहे हैं, और यह सबसे बड़ा जो था यह फरमाता है कि जो मेरे बाद यानी मसीह जो आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। बल्कि यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं उसके पहले बाब में और उसकी 29 आयत से लेकर 34 आयत तक, 29 उर्दू जुबान में, पंजाबी 29 आयत तो लैके यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 29 आयत तो लैके 34 आयत तक, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 29-34, तो वहां पर वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मसीह जो आने वाला है, मैं मसीह नहीं हूं, जैसा कि यूहन्ना ने साफ साफ फरमाया। यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 19 और 20 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब लोग पूछने के लिए यूहन्ना के पास आए कि क्या तू मसीह है या क्या तू एलिया नबी है, क्या तू वो नबी है, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह के आगे, खुदावंद के आगे उसकी राह तैयार करने वाला हूं। अब ये राह तैयार करने वाला जो है ये कहता है कि मैं मसीह के जूतों को उसके तस्मे खोलने के लायक नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि झुक कर उसकी जूती के तस्मे को खोल सकूं, उसकी जूतियों को उठा सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं। ऐसा बड़ा नबी यह बयान दे रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब तक पाकरू खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं आया, खुदावंद यीशु मसीह कुछ कर नहीं सकते थे। ये तो बाइबल की सारी तालीम गलत हो जाती है अगर हम ऐसा मान लेते हैं। बाइबल की तालीम, क्रिश्चियनिटी की तालीम नहीं, बाइबल की तालीम, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में शायद को और तरह की भी तालीम देता हो, लेकिन बाइबल की डॉक्ट्रिन के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदावंद यीशु मसीह तो वो तो है मसीह, पदेशी तौर पर वो मसीह है। लुका की इंजील जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब खुदा यीशु मसीह की, माफ कीजिए, दूसरे बाब में और उसकी 12 आयत से आगे लिखा है कि खुदा यीशु मसीह को जब हैकल में लेकर जाया गया तो वहां शमाउन नाम का शख्स था जो कि बुजुर्ग आदमी था, बूढ़ा हो चुका था। उसने जब खुदा यीशु मसीह को, छोटे बच्चे को जब देखा तो उसने खुदा यीशु मसीह को लेकर, हाथों में लेकर उसने ये प्रोफेटिक वर्ड बोला, ये दुआ भी की उसने, और उसने कहा कि ऐ खुदा अब तू मुझे अपने पास बुला ले क्योंकि जो वादा तूने मुझसे किया था वो पूरा हो चुका है, आज मैंने तेरी निजात देख ली है, यानी मैंने मसीह को देख लिया है। जब मसीह को देख लिया, वो तो 8 दिन का था, 8 दिन के मसीह को देखने, वो पदेशी तौर पर खुदा यीशु मसीह मसीह थे। ऐसा नहीं कि पहले उनको पता नहीं था कि वो कौन है और उन पर पागरू आ गया और पागरू ने आकर उनके साथ कलाम किया कि तू मसीह है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो है ही मसीह। खुदावन के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। वो तो इससे पहले कि मां मुकद्दसा मरियम में, उनके रहम में वो जाते, वो हमला होती, खुदा यीशु मसीह तो पहले से मौजूद हैं, कायनात के शुरू होने से पहले से वो मौजूद हैं। जैसा कि बहुत दफा मैंने बयान किया है कि खुदा यीशु मसीह तो शुरू ही से हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 1, 2, 3, 4 आयत, इब्तदा में यानी शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और कलाम के वसीले से सब कुछ पैदा हुआ, और जो कुछ भी पैदा हुआ उनमें से कोई चीज भी कलाम के बगैर पैदा नहीं हुई। और फिर 14वीं आयत में यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वहां पर लिखा है, और कलाम मुजस्म हुआ, कलाम ने यानी खुदा ने जिस्म लिया और वो हमारे दरमियान आकर रहा। तो मसीह जो है उसने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली, जैसा कि फिलिपियों का खत, उसका 2 बाब और उसकी 5, 6, 7, 8, 9 आयत जब हम पढ़ते हैं, लेटर टू फिलिपियन चैप्टर 2 verses 5-9, तो वहां पर लिखा है कि उसने खादिम की सूरत इख्तियार कर ली, खादिम की सूरत इख्तियार कर ली, और कलाम में लिखा है हालांकि वो खुदा की सूरत पर था। और इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, इब्रानियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 1, 2, 3 आयत, लेटर टू हिब्रूज चैप्टर 1 verses 1-3, लिखा है कि ही इज द ट्रू इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, वो अनदेखे खुदा की सूरत है। कुलुसियों के खत में पहला बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि वो खुदा की सूरत है, ही इज द इमेज, ही इज द फोटोग्राफ ऑफ अलमाइटी गॉड। अगर किसी को कादरे मुतलक खुदा को देखना है तो पहले वो उसकी तस्वीर देखेगा, अच्छा जी ये खुदा है, तो वो तस्वीर कौन है, वो खुदा यीशु मसीह है। तो मसीह दरअसल पदेशी तौर पर मसीह था, ऐसा नहीं कि किसी ने 30 साल की उम्र में आकर फरिश्ते ने कहा हो, या खुदा का बुलावा उन पर आया हो, या रूहुल कुद्स ने, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ने, पागरू ने उनके साथ कलाम किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो सारी कायनात को क्रिएट करने वाला है। कलाम में लिखा है कि सब कुछ उसी के वसीले से पैदा हुआ और उसी के लिए पैदा किया गया। कुलुसियों का खत पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत, लिखा है कि वो सब चीजों से पहले था, वो तो सब चीजों से पहले, बल्कि यह नहीं कि दूसरों ने कहा, खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया, मुकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत, खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना اپنے شاگرد کے پاس جب وہ بزرگ ہو چکے تھے پیتمس کے جزیرے میں آ کر فرمایا, یوحنا نے جب وہ پریشان تھے تو خدم یسو مسیح اس کے پاس آئے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خداوند کے دن روح میں آ کر کیا دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آدمزاد سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامع پہنے ہوئے تھا. وہ کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب یعنی سورج, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی مانند تھی. خداوند کے نام کی تعریف, اور اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی تھی. اور یوحنا رسول کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا ہو کر گر گیا, اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر, ڈر نہ, میں اول اور آخر, الفا اور اومیگا ہوں, میں زندہ ہوں, میں مر گیا تھا اور دیکھ عبد الاباد زندہ رہوں گا. ادم یسو مسیح نے خود فرمایا کہ میں اول اور آخر ہوں. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 22 باب اور اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے, خدا یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, میں الفا اور اومیگا اول اور آخر ہوں. خدا یسوع مسیح تو اول اور آخر ہیں, وہ تو الفا اور اومیگا ہیں. خدا ان کے نام کی تعریف ہو, پریز گاڈ. اور کلام میں لکھا ہے پترس کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 19-20-21 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں جو گناہوں سے خلاصی ملی ہے وہ سونے اور چاندی کے وسیلے سے نہیں ملی, بلکہ ایک بے برے یعنی خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے. لکھا ہے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا, اس کا نالج, اس کا گیان تو کائنات کے بننے سے پہلے ہی تھا, پہلے ہی سے وہ مسیح تھا. اور کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں 14 مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 13 آیت, دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14:13 ہندی اور پنجابی میں پرکاش دی پوتھی یا پرکاشت واقعہ, چیپٹر 14 یعنی 14 ادھیائے اور اس کی 13 آیت, لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح بنائے عالم کے وقت سے ہی ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. خدا کے نام کی تعریف ہو, پریز گاڈ. تو اگر کوئی یہ کہے کہ اچانک یسوع مسیح جب 30 کے ہوئے تو اچانک ان پر پاکرو آ گیا اور انہوں نے کام شروع کر دیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں ہندی اور پنجابی میں اتپتی, دا بک آف جینیسس چیپٹر 1:1-3 لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو بنایا یا پیدا کیا, اور لکھا ہے کہ خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا تھا, اور خدا نے کہا اب خدا اور اس کے بعد خدا کا روح اور تیسرے نمبر پر کلام. خدا نے کہا, یہ جو لفظ کہا ہے, روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی, یعنی کلام موجود ہے, باپ اور بیٹا اور روح القدس. خدا ان کے نام کی تعریف ہو, پریز گاڈ. وہ تو شروع سے موجود ہیں, ایسا نہیں کہ اچانک ہی ان کو بتایا گیا کہ آپ مسیح ہیں, آپ نے یہ کام کرنا ہے, ایسا نہیں ہے. ان کا ایک جو کام تھا وہ یونیک تھا, وہ منفرد تھا, سب سے انوکھا, سب سے علیحدہ تھا. اس لیے تو وہ خود بھی سب سے انوکھے, سب سے علیحدہ, سب سے یونیک ہیں, پاک اور پوتر ہیں, کیونکہ وہ انسان کی مرضی سے پیدا ہی نہیں ہوئے, انسان کے ملاب سے پیدا نہیں ہوئے, وہ کنواری के वसीले से शरीयत के मुताबिक गलतियों चार बाब और उसकी चार आए, गलेशियन चैप्टर 4:4, जैसा कि लिखा कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा जो कि शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। कुंवारी मरियम के वसीले से वो पैदा हुए, कुंवारी के वसीले से। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। तो वो योना रसूल कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो यहां जो हवाला मैंने आपको बताया था गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1:29-34, योना की इंजील पहला बाब 29 आयत से लेकर 29 आयत से लेकर 34 आयत तक, वो कहते हैं कि जो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और रूहुल कुद्स, आग और पाखरू पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पाखरू से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। अब ये पाखरू का बपतिस्मा देने वाला जिसकी प्रोफेसी पहले से हो चुकी थी, योएल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 28 और 29 आयत, द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2:28-29, वहां पर लिखा है कि फिर मैं हर फर्दो बशर पर अपने रूह को नाजिल करूंगा, अपने रूह को नाजिल करूंगा। खुदा फरमा रहा है, 700 साल तकरीबन पहले ही खुदा फरमा रहा है, या 600 साल पहले फरमा रहा है कि आखिरी अयाम में, आखिरी दिनों में मैं हर फर्दो बशर पर, हर मनुख देते, हर मनुष्य पर अपने पाखरू को, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। अब पवित्र आत्मा को भेजने वाला जो है वो तो खुदा यीशु मसीह है। खुदा यीशु मसीह ने खुद भी फरमाया, योना की इंजील और उसका 14 बाब और उसकी 15-16-17-18 आयत, जब हम पढ़ते गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14:14-15-16-17-18, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें रूहुल कुद्स दे। और इससे पहले एक बात जो मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं, आपको याद कराना चाहता हूं, योना ही की इंजील और उसका 14 बाब और उसकी 6-9 आज तक जब हम पढ़ते हैं गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14:6-9, वहां पर लिखा हुआ है कि फिलिपुस ने कहा कि ऐ खुदावंद, तू सिर्फ ये कर कि हमें बाप को दिखा। क्यों उसने कहा? क्योंकि 3 साल से फिलिपुस जो था वो खुदावंद यीशु मसीह को पीछे चल रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान की बातें कही कि मैं बाप के पास जाता हूं, योहन्ना की इंजील 14:1-3 आए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। उसने जब सुना कि ये आसमान पर जाने की बातें कर रहे हैं तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, ऐ रबी, ऐ उस्ताद, सिर्फ ये कर, ऐ मालिक, सिर्फ ये कर के बाप को हमें दिखा, खुदा को हमें दिखा। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि फिलिपुस, मैं इतने अरसे से, इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, तू क्या तू मुझे नहीं जानता? क्योंकि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। योहन्ना की इंजील 10 उसकी 30 आयत, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 10:30, खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं और बाप एक हैं। ही इज द बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट, और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जाऊंगा तो दूसरे मददगार को भेजूंगा। यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 26 27 28 आयत, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 26-28, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा ताकि रूहुल कुद्स जो मेरे नाम से सादिर होता है, मेरे नाम से मिलता है, ताकि मैं उसको भेजूं। खुदा यीशु मसीह तो रूहुल कुद्स को भेजने वाले हैं, यानी खुदा के रूह को भेजने वाले हैं। तो अगर हम यह कहें कि जब तक रूहुल कुद्स नहीं आया था मसीह रूहुल कुद्स के बगैर कुछ कर नहीं सकता था, यह गलत है, टोटली गलत तालीम है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज़ गॉड, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रसूल कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें आग और रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। ही विल बेप्टाइज यू विद फायर एंड द होली स्पिरिट। वो मसीह के बारे में कह रहा था, उसने कहा मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि उसकी जूतियों को हाथ लगा सकूं, उसकी तो जूतियां भी पाक हैं, पवित्र हैं। अगर इंसान उसकी जूतियों को छू ले तो वही पाक हो जाता है, क्योंकि जिस चीज को मसीह का बदन छूता है, मसीह के बदन से पाकीजगी होलीनेस निकलती है, हीलिंग निकलती है, शिफा निकलती है, क्योंकि उसके बारे में पहले से फरमा दिया गया, पहले से प्रोफेसी नबूत भविष्यवाणी कर दी गई। मलाकी 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में, द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 वर्स 2, लिखा है कि फिर आफताब सदाकत तुम पर तुलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, यानी सच्चाई का सूरज तुम पर निकलेगा और उसकी किरणों से शिफा निकलेगी। खुदा यीशु मसीह जो लिबास पहनते थे उस लिबास में से शिफा निकलती थी, जो लिबास उनके तन को छू जाता था लिबास ही पाक हो जाता था, नपाकी चली जाती थी जो कुछ लिबास को छूता था, जो कुछ उसकी जूती को छूता था नपाकी चली जाती थी। जैसा कि शिमाउन के घर में औरत जो कि एक बाजारू औरत थी, प्रोस्टिट्यूट थी, कसमी थी, वो खुदा यीशु मसीह के पास आई और आकर अपने आंसुओं से उसके पांव भिगो दिए, ऐसा रोई, ऐसे आंसू बहाए, क्योंकि उस आफताब सदाकत को देखने के बाद, खुदा यीशु मसीह पर निगाह करने के बाद, खुदा यीशु मसीह का दीदार करने के बाद, खुदा यीशु मसीह का दर्शन करने के बाद उसका दिल टूट गया, उसके आंसू बहने शुरू हो गए। अपने आंसुओं से उसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव धो दिए और अपने बालों से उसके पांव को साफ किया। जैसे उसने पांव को छू दिया अपने बालों से, पाकीजगी उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया, बेटी जा, तेरे गुनाह माफ हुए, सलामत चली जा। गुनाह की वजह से जो नपाकी अशुद्धता तेरे अंदर आ गई थी वो धुल गई है, खत्म हो गई है। यूहन्ना रसूल कहते हैं मैं जूतियों का तस्मा खोलने के काबिल नहीं, छूने के काबिल नहीं हूं। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। और ये शख्स यूहन्ना नबी जो थे ये गुनाहगारों को बपतिस्मा दे रहे थे। खुदा ने इनके साथ कलाम किया था। जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं उसके तीसरे बाब में लिखा है, उसकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आयत जब पढ़े तो लिखा है कि बियाबान में, जंगल में यूहन्ना नबी जहां रहते थे तो लिखा है खुदा का कलाम यूहन्ना पर नाजिल हुआ। अब जब कलाम नाजिल हुआ तो ये शख्स बेशक गुनाह में जिंदगी नहीं गुजार रहा था, पर फिर भी वो कहता है मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के काबिल नहीं हूं, मेरे हाथ इस काबिल नहीं कि जो जूतियां मालिक ने पहन ली हैं मैं उनको छू सकूं। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। और यूहन्ना रसूल ने, माफ कीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नबी ने जो एक और बात कही वो ये है, उन्होंने कहा कि जिसकी बाबत मैंने कहा था वो मेरे बाद आता है, जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है वो मुझसे बड़ा है क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो कहते हैं वो मुझसे पहले था, हालांकि बाइबल के रिकॉर्ड के मुताबिक, कलामे मुकद्दस के मुताबिक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले नबी जो थे ये उम्र में खुदावंद यीशु मसीह से 6 माह 6 महीने बड़े थे, लेकिन वो कहते हैं कि वो मुझसे बड़ा है। क्यों वो कहते हैं वो मुझसे बड़ा है? क्योंकि लिखा है कि और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है। यानी ये यूहन्ना की पहचान के लिए था कि ये मसीह है, इसके लिए तू राह तैयार करने के लिए भेजा गया है, यूहन्ना नबी को बताने के लिए, ताकि यूहन्ना नबी मसीह यीशु को जो कि मसीह है पहचान सके। लिखा है कि मैं तो उसे पहचानता ना था, हालांकि रिश्ते में वो कजन लगते थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तो उसे पहचानता ना था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं नहीं जानता था कि यीशु ही मसीह है। पर उसने कहा कि जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा है उसी ने मुझसे कहा है, जैसा कि मैंने पहले बयान किया लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आयत, वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम यूहन्ना पर नाजिल हुआ। यूहन्ना नबी पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। खुदा ने उसको कहा कि जिस पर तू कबूतर की फाख्ता की, डव की मानिंद रूहुल कुद्स को उतरते देखे वही मसीह है। यह यूहन्ना की गवाही के लिए था, यूहन्ना की पहचान के लिए था कि यीशु ही मसीह है। और फिर वो कहते हैं कि मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा। यानी कादर मुतले खुदा यहोवा एलोहिम एदोनाई ने फरमा दिया। और फिर वो कहते हैं कि जिसने मुझे पानी का बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। और कहते हैं कि उसी के रूह में से तो हमने पाया है, उसी का रूह तो हम पर आया है, उसी का रूह मुझ पर आया है, इसलिए तो मैं नबी बना हूं। मैंने जंगलों में जिंदगी गुजारी है, जैसा कि मत्ती की इंजील और उसका तीसरा बाब और उसकी 1, 2, 3, 4, 5 आयत जब पढ़ें, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 verses 1, 2, 3, 4, 5 लिखा कि यूहन्ना जंगलों में रहता था, ये दुनिया से अलग थलग रहता था, क्योंकि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक वहां रहता था, खुदावंद की राह तैयार करने के लिए। 700 साल पहले इसके बारे में भी प्रोफेसी की गई थी, नबूवत की गई थी। यशायाह की किताब और उसका 42 बाब 1, 2, 3, 4 आयत इसके बारे में प्रोफेसी की गई थी। यह तो राह तैयार करने वाला था, पर उस वक्त तक जब तक खुदा ने इसके साथ कलाम नहीं किया, उस वक्त तक जब तक मसीह के रूह का मसा इस पर नहीं आया, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जितने भी नबी थे उन तमाम पर मसीह के रूह का मसा था, तमाम पर मसीह के रूह का मसा था। पतरस का पहला खत, उसका पहला बाब, उसकी 10, 11, 12 आयत, 1 Peter chapter 1 verses 10, 11 and 12 लिखा हुआ कि जितने भी नबी थे वो मसीह के बारे में नबूवत करते थे, और नबूवत जब वो करते थे तो उसके साथ वो ये तलाश और तहकीक करते थे कि कौन से वक्तों में मसीह आएगा, क्योंकि उन पर आगे फिर लिखा है क्योंकि उन पर मसीह के रूह का मजा था। कोई भी नबी उस वक्त तक बाइबल के मुताबिक नबी नहीं हो सकता था जब तक उस पर मसीह का रूह ना आए। और अब ईमानदारों के बारे में भी ऐसा लिखा हुआ है, जब हम रोमियों का खत उसका 8वां बाब पढ़ते हैं, उसकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 आयत लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अब मसीह तो शुरू ही से मसीह है, उसकी कुदरत तो महान है। जैसा मैं बयान कर रहा था कुछ देर पहले, मेरा ख्याल है क्रिसमस के पैगाम देते हुए, हम हमारे जो इस्लामी भाई हैं हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ईमान की इज्जत करते हैं, उनकी जो होली बुक है कुरान शरीफ हम उनकी भी इज्जत करते हैं, उसमें मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो खुदा का रूह है, वो कलमतुल्ला यानी वो खुदा का कलाम है, और लिखा हुआ है कि वो पैदा होते ही बोल पड़े थे। जैसे उनकी पैदाइश हुई उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्यों बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि वो तो खुद कलाम है, इसलिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और लिखा है कि वो जमीन की मट्टी लेते थे, चिड़ी बनाते थे, परिंदा बनाकर उसमें जिंदगी फूंक देते थे, यानी फूंक मारते थे, चिड़ी जो है वो हकीकत में जिंदा होकर उड़ जाती थी, मट्टी की चिड़ी। ऐसे ऐसी कुदरत वाला खुदावंद के नाम की तारीफ हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सचमुच अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर है। पैदाइश की किताब में वो औरत की नस्ल है, खरूज की किताब में वो फसा का बर्रा है, अहबार की किताब में वो हमारा सरदार काहिन है, गिनती की किताब में वो बनी इसराइल कौम के आगे आगे चलने वाला, रात के वक्त आग का सतून और दिन के वक्त बादल का सतून है, इस्तिस्ना की किताब में वो हमें शरीयत देने वाला है, یشوع کی کتاب میں وہ ہماری نجات کا سردار ہے، کوزات کی کتاب میں وہ ہمارا جج یعنی ہمارا قاضی ہے، روت کی کتاب میں وہ ہمارا نزدیک کا قرابتی، نزدیک کا رشتہ دار ہے، عزیز بھانو بھائی، اور پہلا دوسرا سیمول میں وہ ایسا نبی ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارا با بھروسہ نبی ہے، پہلا دوسرا سلاطین میں وہ ہمارا خداوند ہے جو دعاؤں کا جواب آگ سے دیتا ہے، پہلا دوسرا تواریخ میں وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا راج کرنے والا بادشاہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ نہمیہ عزرا کی کتاب میں وہ دراصل ہمارا ایسا فقی ہے، ایسا فقی ہے جو پاکیزگی کے ساتھ چلتا ہے، اور نہمیہ کی کتاب میں وہ خدا کے گھر، ٹوٹے ہوئے گھر کو پھر سے بنانے والا ہے، اور آستر کی کتاب میں وہ ہمارا مرد کی ہے، ایوب کی کتاب میں عزیز بہنوں بھائیو وہ ہمارا خداوند ہے جو ہمیشہ تک ہمارا رہائی بخشنے والا، جو ہمیشہ تک زندہ ہے، زبور کی کتاب میں وہ ہمارا چوپان ہے، ہمارا چرواہا ہے، امثال کی کتاب میں اور وائز کی کتاب میں وہ ہماری حکمت ہے، غزل و غزلات میں وہ کلیسیا سے محبت کرنے والا ہے، یسایا کی کتاب میں وہ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور یرمیا کی کتاب میں عزیز بہنوں بھائیو وہ راست باز شاخ ہے، نوحا کی کتاب میں وہ انسوں کا نبی ہے، ہزکل کی کتاب میں وہ چار چہروں والا وہ شخص ہے جو آسمان پر سونے کی سڑکوں پر چلتا پھرتا ہے، دانیل کی کتاب میں یہ وہ چوتھا شخص ہے جو صدرک، میسک، ابدنجو کو بچانے کے لیے آگ کی بھٹی میں اترا ہے، ہوسیا کی کتاب میں عزیز بہنوں بھائیو وہ ایسا شخص ہے جو بیواؤں کو سنبھالتا ہے، وہ بیواؤں کا شوہر ہے، اور عزیز بہنوں بھائیو یوئل کی کتاب میں وہ دراصل پاگرو سے بپتسمہ دینے والا ہے، اموس کی کتاب میں وہ ہماری نجات ہے، ابدیہ کی کتاب میں وہ ہمارا رہائی بخشنے والا ہے، یونا کی کتاب میں وہ ہمارا مشنری ہے، میکا کی کتاب میں وہ ایسا پیغمبر ہے، ایسا ایونجلسٹ ہے جو دور دور جا کر خدا کا کلام سناتا ہے، نحوم کی کتاب میں وہ خدا کی قوم اسرائیل کا بدلہ لینے والا ہے، حبقوق کی کتاب میں وہ خدا کا مبشر ہے جو خوشی سے بھرا رہتا ہے، خداوند کے نام کی تعریف ہو، پریز گاڈ، اور سفنیہ کی کتاب میں وہ ہمارا خوشی بخشنے والا، ہمارا نجات دہندہ ہے، سفنیہ کی کتاب میں وہ ہمارا رہائی بخشنے والا ہے، ہجی کی کتاب میں وہ خدا کی کھوئی میراث کو بحال کرنے والا ہے، اور عزیز بہنوں بھائیو زکریا کی کتاب میں یہ داؤد کے گھرانے سے نکلا ہوا وہ چشمہ ہے جو سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ملاکی کی کتاب میں وہ آفتاب صداقت ہے جس کی کرنوں سے شفا نکلتی ہے، متی کی انجیل میں وہ مسیح ہے، مرکز کی انجیل میں وہ حیران کن کام کرنے والا ہے، لوکا کی انجیل میں وہ ابن آدم ہے، یوحنا کی انجیل میں وہ ابن خدا ہے، رسولوں کے اعمال میں وہ خود ہی پاکرو، روح القدس، ہولی اسپرٹ ہے، رومیوں کے خط میں وہ ہمیں مفت راست باز ٹھہرانے والا ہے، پہلا دوسرا کرنتھیوں میں وہ پاکرو کی نعمتیں ہیں، گلتیوں کے خط میں وہ ہمارا فدیہ دے کر ہمیں شریعت کی لانت سے چھڑانے والا ہے، افسیوں کی کتاب میں وہ ہماری زندہ امید ہے، کلوسیوں کے خط میں وہ کریٹر ہے جس نے سب کچھ اپنی قدرت، اپنے کلام سے پیدا کیا، فلپیوں کے خط میں وہ ہمارا رہائی بخشنے والا ایسا خداوند ہے جس نے موت تک کی پرواہ نہیں کی، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا جلال چھوڑ کر اس دھرتی پر خادم کی صورت اختیار کر کے آ گیا، پہلا دوسرا تھسلنیکیوں میں وہ ہمارا جلد آنے والا خداوند ہے، پہلا دوسرا تیموتیس اور تیتوس میں وہ ہمارا پاسبان ہے، فلمون میں وہ ہمارا ایسا دوست ہے جو بھائی سے بھی بڑھ کر ہو، عبرانیوں میں وہ زندہ خون ہے جو ہماری شفاعت کے لیے آسمان پر ہمیشہ ہمیشہ تک موجود ہے، عزیز بہنوں بھائیو یعقوب کے خط میں وہ ہمارا عظیم ترین شافی ہے جو تیل ملنے کے وسیلے سے ہمیں شفا دیتا ہے، पहला दूसरा पत्रस में वो हमारा सबसे बड़ा चरवाहा है, पहला दूसरा तीसरा यूहन्ना में वो हमारी मोहब्बत है, यहूदा के खत में अजीज बहनों भाइयों वो हमारा खुदावंद है, और मैं आपको बताना चाहता हूं मुकाशवा की किताब में वो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, जो आसमान से जल्द आने वाला है। वो तो खुद ही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो, प्रेज गॉड। मेरा ख्याल है कि इससे जितने लोगों की तालीम अगर किसी की बिगड़ चुकी है उसकी तालीम करेक्ट हो गई होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शाम, बल्कि दावत देना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, अगर आप किसी भी तरह के बोझ के नीचे हैं, फिक्र मंदी के नीचे हैं, खुदावंद यीशु मसीह का हाथ शिफा देने के लिए भरा हुआ है, बरकत देने के लिए भरा हुआ है। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। बद्रोहों के, शैतान के बंधन टूट रहे हैं। जितने लोग इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं और इसके बाद भी जो लोग यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए या किसी भी मीडिया के वसीले से इस कलाम को सुनेंगे, उनकी जिंदगियों से बंधन टूट जाएंगे, शैतान बद्रोह भाग जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी खुदावंद के नाम की। किसी की किडनीज में स्टोन्स हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा दे, किडनी स्टोन्स रिमूव हो गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम की दर। पित्ते के अंदर पथरी है, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको शिफा, हर तरह की हार्ट डिजीज से खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा दे रहा है। किसी की टांगें काम नहीं करती, आपकी टांगों के मसल्स कमजोर हो चुके हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा दे रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से भाई मेरी बहनों, दो बहनें भी हैं, उठकर चलना शुरू कर दें, खुदावंद यीशु मसीह आपको रिहाई बख्शा, हर तरह का गेंठिए का मर्ज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चला जाए। हमारी वो बहन जिसका नाम मैं मीडिया पर नहीं लूंगा, उनके पांव का ऑपरेशन था आज, शुगर की वजह से उनका पांव खराब हो चुका, खुदावंद यीशु मसीह उस बहन पर भी रहम कर दीजिए, उन्हें छू कर मुकम्मल शिफा दे दीजिए। मैं तेरा शुक्र करता हूं तूने दुआ सुनी है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन, प्रेज गॉड। अभी हमारे पास तकरीबन 12-14 मिनट हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम लाइव कॉल्स लेकर आपकी अगर आपको दुआ की जरूरत है तो यू आर वेलकम, आप कॉल कर सकते हैं और मैं खुदा का खादिम हूं तो आपके लिए दुआ करूंगा। आपकी हर जरूरत खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पूरी होगी, हर जरूरत खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पूरी होगी। और अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको दुआ की जरूरत हो, आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे भाई हैं, आपका किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी नेशनैलिटी से ताल्लुक हो, आप सब हमारे बहन भाई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए भी अपनी जान सलीब पर दी है, खुदावंद यीशु मसीह आपको शिफा देगा, खुदावंद यीशु मसीह आपको रिहाई बख्श देगा। अगर नंबर डिस्प्ले हो गया है तो आप नंबर को कॉल कर सकते हैं ताकि मैं खुदा का खादिम हूं तो आपके लिए दुआ कर सकूं। और इसके बाद अगर किसी वजह से आपकी कॉल थ्रू ना हो, क्योंकि वक्त कम है, 12 मिनट है सिर्फ, 13 मिनट, अगर आपकी कॉल थ्रू ना हो सके तो आप बाद में भी आप कॉल कर सकते हैं। आई प्रोमिस यू अगली दफा मोहब्बत के बारे में कलाम सुनाऊंगा और आधा वक्त जो है वो कॉल्स के लिए रखूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। हम कॉलर से बात करते हैं। हेलो, ओ कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तो हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, मुझे बेल की आवाज आ रही है, हम कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो, गुड इवनिंग,
वेरी गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग। हेलो
जी जी,
खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत सी बरकत दे। खाकसार की ये खुदावंद के हुजूर इल्तिजा है, खुदा ऐसा मुमकिन करे कि आप हर हफ्ते की बजाय हर रोज खुदावंद का पाक कलाम हम खाकसारों तक पहुंचाएं। हर रोज आज का पाक कलाम बाय से बरकत था, खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के बाद मैं आपको पादरी जी नहीं कहूंगा, बल्कि आप तो पादरियों से भी ज्यादा हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं आपको बिशप का लकब दूं।
ना ना ना,
क्योंकि जो जो तालीम, जो मैसेज आप जिस तरह से बयान करते हैं वो पास्टरों से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं खुदावन यीशु मसीह का दिल की गहराइयों के साथ शुक्र अदा करता हूं कि आप हमारे रहनमा हैं और आप चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट का एक हिस्सा हैं। मुझे इस पे बहुत फखर है कि हम आपके ताबेदारी करते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर तारक भट्टी साहब, क्योंकि वो खुद भी खुदा के खादिम हैं, पासबान हैं, पास्टर हैं, तो मैं दिल से उनकी मोहब्बत के लिए खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ। माफ़ कीजिए। और मैं उनकी कलीसिया का हिस्सा हूँ। दरअसल जब मैं जर्मनी में होता हूँ, ये जर्मनी फ्रैंकफर्ट से कॉल कर रहे थे, तो खुदावंद के नाम की तारीफ हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। और पारी साहब, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्द, मैं ये फेसबुक असल में बहुत साल पहले मुझे शुरू करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं किया, इसके लिए मैं गिल्टी महसूस करता हूँ। लेकिन हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और एक नौजवान हैं शायद नज़ीर साहब, जो कि गॉस्पल सिंगर हैं, और हमारे भाई सैमुअल गिल साहब, उन्होंने दरअसल मुझे मशवरा दिया, बल्कि एक तरह से मुझे पुश किया कि मैं ये फेसबुक खोलूं, यानी अकाउंट खोलूं। और मैं कोशिश करूंगा कि फेसबुक के ज़रिए हर रोज़ चाहे छोटा सा पैगाम, या हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा करूंगा कि लोगों को तालीम दे सकूं, क्योंकि मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानता हूं, मेरे जो उस्ताद थे वो बहुत बड़े खुदा के खादिम पास्टर डॉक्टर लियाकत कैसर साहब जो हैं एफजीए के लाहौर के, वो मैंने उनके कदमों में बैठकर तालीम पाई है और मैंने उनसे सीखा। मैं अच्छा स्टूडेंट तो नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद खैर मैंने यहाँ पर भी तालीम पाई है, लेकिन उनसे मैंने, आप कह लेंगे, इंजील की समझ मुझे उनके वसीले से लगी। खुदा उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे और उन्हें सरफराज करे, बुलंदी पर लेकर जाए। और इसके साथ मैं जो फेसबुक के ज़रिए सुन रहे हैं या सुनेंगे इसके बाद भी, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बल्कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मैं फेसबुक के ज़रिए जो बीमार हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, बदरू गिरफ्तार हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम में, माफ़ कीजिए, खुदा यीशु मसीह के नाम से उन सब लोगों के लिए हर रोज़ दुआ कर दिया करूँ, ताकि जितने लोग भी जहाँ जहाँ पर भी हों, कहीं पर भी वो रिसीव कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने नई नई खिदमत शुरू की थी, तो यानी टेलीविज़न पर, जब मैंने तकरीबन 10 साल पहले की बात है, तो बहुत मौजज़ात जब होते थे, तो जब लोग कलाम सुनते थे या टेलीफोन पर दुआ कराते थे, तो लोगों ने जब गवाही देनी कि मुझे कैंसर था, मेरी किडनीज नहीं पड़ गई, मेरा सारा निज़ाम दिल का ठीक हो गया, मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया, खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी, तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं इसको समझ नहीं सका कि ये मौजज़ात किस तौर से होते हैं। कोई भाई साहब मेरे फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, मेरे मोबाइल पर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दरअसल जो डिस्प्ले नंबर हो रहा है, लैंडलाइन नंबर, वो उस पर कॉल करें, मेरे मोबाइल पर, वो बाद में प्रोग्राम के बाद मुझसे बात कर सकेंगे। हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं बिशप साहब, आज ही मेरी उनसे बात भी हुई थी, खुदावंद उनको बरकत दे, वारिंगटन से हैं वो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो स्क्रीन पर, टेलीविज़न की स्क्रीन पर जो लैंडलाइन नंबर है उस पर कॉल करें, तो फिर वो मैं, मेरे लिए प्रिविलेज होगी उनसे बात करना, खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। तो मैं ऐसा सोचता था कि ये कोई ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से फ़ोन करता है और वो किस तरह से लोग शिफा पाते हैं, मैं फ़ोन पर दुआ करता हूँ, ये शायद खुदा ने मेरी आवाज़ में कोई ऐसी बात रखी, मैं इसको जानना चाहता था। तो एक दिन मैं इसके बारे में गौर कर रहा था कि ये मोजज़ात किस तरह होते हैं, तो खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और खुदा के रूह ने मुझे बताया कि तेरी आवाज़ में कुछ नहीं तो ना तो खुद कुछ है। मैं कहा जी अच्छा मैं वो तो मैंने पता है जी तुम, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये इतनी इतनी दूर तक टेलीफोन जब लोग करते हैं तो मिरेकल्स किस तरह होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कहा कि जहाँ से लोग फ़ोन करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो ऑस्ट्रेलिया हो, मेरे लिए डिस्टेंस फासला जो है वो तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हर जगह पर एक ही वक्त में मौजूद हूँ। जहाँ से लोग फ़ोन करते हैं मैं वहाँ पर भी मौजूद हूँ, जहाँ पर तू दुआ कर रहा होता है मैं वहाँ पर भी मौजूद होता हूँ। तो मैंने कहा हो अच्छा अच्छा खुदावंद के नाम की तारीफ हो। तो बहुत से लोग जो हैं वो कलाम सुनकर, मुझे एक दफ़ा बहुत बरकत मिली, मैं बार्सिलोना एयरपोर्ट पर था, मैं वापस वहाँ मनादी करके लंदन की मेरी फ्लाइट थी, तो मुझे एक अजीब नंबर था जहाँ जैसे मैंने अपना मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑन किया तो वो नंबर से कभी मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। तो जो मैंने सोचा कि ये मुझे कॉस्ट काफ़ी पड़ेगी, तकरीबन 1.5-2 pounds एक मिनट के पड़ेंगे अगर मैं फ़ोन सुनता भी हूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं शायद कोई ज़रूरतमंद होगा, कोई बात नहीं, पैसे तो सभी खुदा ही देता है, वो ही मुहैया करेगा। तो दूसरी तरफ से उन्होंने मुझे कहा जी मेरा नाम पास्टर शायद यूसुफ, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी मैं आपको मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ प्लीज़ आप मेरे मोबाइल पर फ़ोन मत कीजिए, आप जो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर आ रहा है 0203 या 0208 वाला नंबर, उस पर कॉल करें प्लीज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जो गर्दन के मोहरे हैं चार ये ख़राब हो चुके हैं और इसकी वजह से मेरी गर्दन पर वो उन्होंने वो बैंडेज सा चढ़ाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि कोरिया में डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि ये तकरीबन पाकिस्तानी 1 crore रुपया लगेगा, फिर हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं है कि वो ठीक होगा कि नहीं। तो कहने लगे कि मैं आपका एक पैगाम था जो 6 महीने पुराना था यूट्यूब पर, उसने कहा कि मैं वो सुन, अचानक मैंने वो लगाया तो मैं जब वो प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें आपने कहा किसी गर्दन में प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आपने ये कहा कि किसी की गर्दन में खराबी है खुदा यीशु मसीह आपको शिफा दे रहा है, तो कहने लगा मुझे ऐसे जैसे करंट लगा एकदम। तो मैंने वो जो उनकी गर्दन पर वो चढ़ाया हुआ था उन्होंने एक जैसे प्लस्तर होता है, अब मैं मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, तो वो कहने लगे कि मैंने वो बैंडेज सा एकदम से खोल दिया और मैंने गर्दन घुमाई, मैं मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया, डॉक्टर्स के पास गया, अस्पताल गया, दोबारा चेक कराया, उन्होंने कहा जी कि परफेक्टली तेरी गर्दन जो है सारे मोहरे जो हैं मुकम्मल तौर पर शिफा पा गए। तो मैंने खुदावंद की तारीफ की, मैं उधर ही सिजदा मैंने किया खुदावंद यीशु मसीह को और खुदा का शुक्र किया कि पास्टर यूसुफ साहब को उन्होंने शिफा दी। और उसमें क्योंकि मेरा कोई कमाल नहीं था, खुदावंद यीशु मसीह दरअसल शाफी हैं। एक लास्ट कॉल हम ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम आखिरी दुआ करेंगे। हेलो हेलो
हेलो
हेलो,
हाँ भाई साहब प्रेज द लॉर्ड।
हाँ जी प्रेज द लॉर्ड जी, सलाम जी।
सैमुअल हक
जी, जी जनाब
आप बड़ी मुश्किल से मिला है, पता नहीं लाइन तो खाली पर मिल नहीं रहा था, खैर कोई बात नहीं है, खुदा का शुक्र है मिल गया और बहुत अच्छा कलाम था आपका और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, क्योंकि जो महसूस करता हूँ, और आप तो पास्टर हैं, आप तो खुदा के कलाम को बड़ी नज़दीकी से समझाना जानते हैं, मैं यही कहूँगा तेरे, हेलो
जी जी मैं सुन रहा हूँ जी,
हाँ तेरे आने की महक मुझको मसीह आती है, वो फरिश्तों की फौज भी तेरे साथ नजर आती है, तूने जो कहा था वो सब पूरा हुआ जाता है, तेरा आना मसीह मुझको नजर आता है। गॉड ब्लेस यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया जी भाई सेवन लाख। अगली दफा जैसा आपने हुक्म किया था मोहब्बत के बारे में, ताकि कलीसिया की मोहब्बत जो है वो कायम रहे आपस में, मैं नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को शाम यूके टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे आपको कलाम सुनाऊंगा। अभी टेलीफोन बज रहे हैं लेकिन आप सॉरी, अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो नेक्स्ट टाइम आप कॉल कर सकते हैं अगर लाइव प्रोग्राम में करना हो तो। गॉड ब्लेस यू वेरी मच, थैंक्स, बाय बाय।